अगला शीर्षक है केशव की भाषा और इसे लिखा है डॉक्टर महेंद्र कुमार ने। भाषा भावाभिव्यक्ति का अत्यंत समर्थ एवं सहज माध्यम है। समर्थ इसलिए क्योंकि जहां इतर माध्यम अपने साधनों के सीमित और अनिश्चित होने के कारण रचनाकार के मनोगत बिंबों की सूक्ष्मताओं और तद्गत वैविध्य के सूत्रधार अपने साधन बाहुल्य तथा उसे निश्चित रूप प्रदान करने वाले नियम बंधन द्वारा पूर्ण रूपेण अंकित ही नहीं करता, इससे आगे अपने बाह्य और आंतरिक सौंदर्य द्वारा उन्हें रमणीय अथवा आस्वादनीय भी बना देता है एवं सहज इसलिए क्योंकि यह रचयिता और आस्वादकर्ता दोनों का समान रूप से बिना किसी अतिरिक्त प्रयत्न के प्राप्त होता है तथा बिंब की अभिव्यक्ति और उसके ग्रहण में समानता योगदान करता है। कलाओं में काव्य कला की लोकप्रियता का सबसे बड़ा रहस्य इसके माध्यम की सामर्थ्य और सहजता ही है, जिनका दर्शन सामान्यतः शब्द भंडार और व्याकरण तथा शब्द और अर्थ संबंधी सौष्ठव में किया जा सकता है। अतएव कवि विशेष की रचना कौशल की परिचायक भाषा की परीक्षा भी इन्हीं के आधार पर की जानी चाहिए। इस बात को दृष्टि में रखते हुए ही केशव की भाषागत विशेषताओं के अध्ययन का प्रयत्न करेंगे। शब्द भंडार और व्याकरण। शब्द भंडार की दृष्टि से केशव की भाषा ब्रजभाषा साहित्य के कवियों की तुलना में सर्वाधिक समृद्ध कही जा सकती है। उन्होंने केवल संस्कृत के प्रचलित अप्रचलित शब्दों को तत्सम और तद्भव रूपों में ही प्रयुक्त नहीं किया, इनके साथ ही साथ प्राकृत और अपभ्रंश के वे शब्द भी इसमें सहज रूप से आए गए हैं जो उस समय की लोक भाषाओं में प्रचलित थे। उदाहरण के लिए, सुनी राम सील समुद्र तब बंधु हैं अति क्षुद्र, यम बाणवानल कोप अब कियो चाहत लोप। इनमें सफेद शब्द संस्कृत तत्सम है और ब्रजभाषा के कवियों की रचनाओं में सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार कुंतल ललित नील भ्रिकुटी धनुष नयन कुमुद कटाक्ष बाण सबल सदाई है, सुग्रीव सहित तार अंगदादि भूषणनी मध्य देश केसरी सु गज गति भाई है, विग्रहानुकूल सब लक्ष्य लक्ष्य रिक्ष बल रिक्ष राजमुखी मुख केशव दास गई है, रामचंद्र जुकी चमु राज श्री विभीषण की रावण की मिचु दरकूच चली आई है। इनमें संस्कृत तत्सम शब्द श्लेष के कारण अप्रचलित कहे जा सकते हैं। राम की सेना, विभीषण की राजश्री तथा रावण की मृत्यु विषयक अर्थों के कारण। ऐसे ही तद्भव शब्द भी प्रचलित अर्थों में द्रष्टव्य हैं। आजु विराजत हैं कहीं केशव श्री वृषभानुकुमारी कन्हाई, बानी बिरंची बही क्रम काम रचीजु बचीसु बधुनी बनाई, अंग बिलोकी त्रिलोक में ऐसी को नारी नहीं जिन नारी नवाई, मूर्तिवंती सिंगारी समीपे सिंगार किए जनु सुंदरताई। कवि प्रिया के उदाहरण देखिए, वृषभ वाहिनी अंग उर वासुकी लसत प्रवीण, शिव संग सौहे सर्वदा शिवा की राय प्रवीण। रामचंद्रिका के त्रयोदश प्रभाव में लिखा है, रवि पुत्र बाली सो होत युद्ध। विज्ञान गीता के अष्टम प्रभाव में लिखा हुआ है, श्याम बंदनी भाग हो लावत छाड़ी विषाद। इनमें प्रथम उद्धरण के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द ऐसे हैं जो ब्रजभाषा कविता में सामान्यतः प्रचलित हैं, जबकि शेष उद्धरणों के शब्द नितांत अप्रचलित अर्थों में भी प्रयुक्त हुए हैं। इन्हीं के समान प्राकृत और अभ्रंश के प्रचलित शब्द भी निम्नोक्त उद्धरणों में काले अक्षरों में छपे हैं। देखिए, बालक मृणालिनी ज्यो तोरी डारे सबकाल, कठिन कराल वह अकाल दिह दुख को, दीठ पीठ तन फेरी पीठ तन इक न डिठिए। प्राचीन भाषाओं के समान अर्वाचीन भाषाओं और बोलियों के शब्द भी केशव की रचनाओं में स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुए देखे जा सकते हैं। इनमें भी राम के चरित्र के गायक तुलसी द्वारा प्रतिष्ठित अवधि भाषा तथा उनके जन्म स्थान की बोली बुंदेली का प्रभाव विशेष रूप से रहा है। काले टाइप में दिए शब्दों से यह बात सहज स्पष्ट हो जाएगी। अवधि प्रभाव, कहूं द्विजगन मिली सुख श्रुति पढ़ही, कहूं हरि हरि हर हर रट रटही, कहां मृगपति मृग शिशु पय पियही, तब रामचंद्र प्रवीण हसी बंधु त्यों दृग दीन गुनी दुष्टता सहलीन श्रुति नासिका बिनकीन। बुंदेली प्रभाव। नख पद पदवी को पावे पद द्रौपदीन एको बिसा उर्वशी उर्मे न आनिबी लोम सी पुलोम जा न तिल सी तिलोत्मा न मैल हु समान मन नका न मानिबी जानिए न कौन जाति अवही जगाए जाति जीवन तो जानी हो जो ताही पहचानिबी बातक सी बानी माही भाव सो भवानी माही केसो दास रति में रति के ज्योति जानिबी। रामचंद्रिका के उदाहरण है। धनु है यह गौरम दाइन नाही शिव सिर ससी श्री को राहु कैसे सूची वे। इनके अतिरिक्त अरबी फारसी और तुर्की जैसी विदेशी भाषाओं के जनसाधारण एवं राज दरबारों में प्रचलित शब्द भी उन्होंने बिना किसी संकोच के ग्रहण किए हैं और वे अपने मूल और ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप ढले हुए दोनों ही रूपों में सहज देखे जा सकते हैं। रामचंद्रिका में कहा गया है, रावण की मीचू दरकूच चली आई है। यहाँ दरकूच फारसी के शब्द हैं। दूसरा, पील पचास समेत इतिक सुरपुर भाग लही अव आए बाहिर आलम साही मुजरा क्यों बसीठने आनी कौ गने राव राजा जीते जिति लिए सबके वतन उजबक उलुक जवासे ज्यों जरत है। ये जहांगीर जस चंद्रिका की पंक्तियां थी। इनमें दरकूच और पील फारसी के आलम मुजरा और वतन अरबी के तथा उजबक तुर्की भाषा के मूल शब्द हैं। इसी प्रकार सका मेघमाला सिखी पाककारी रामचंद्रिका सोडस प्रकाश भाई फिराद साही सिर धुनियो लरे लोग मेरे उठी पेस। ये वीर चरित्र तृतीय प्रकाश। इनमें सका फिराद और पैस क्रमशः फारसी के सक्का फरियाद और पैस के ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप ढले हुए रूप हैं। शब्दों के प्रयोग में कवि को पूरी छूट होती है। वह अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक शब्दों को जैसे भी चाहे प्रयुक्त कर सकता है। इस छूट के कारण ही वह छंद का निर्वाह करता हुआ अपनी रचना को संगीत आदि की दृष्टि से ग्राह्य बनाने में सफल होता है। किंतु यह स्वतंत्रता तभी तक मार्जनीय होती है जब तक कि शब्द इस रूप में रहे कि उसे अर्थ तक पहुंचने में पाठक को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इससे आगे उसका यह व्यापार दोष बन जाता है। ब्रजभाषा के कवियों ने इस स्वतंत्रता का लाभ ही नहीं उठाया, शब्दों की इस भाषा की प्रकृति के अनुरूप विविध रूप प्रस्तुत कर इसकी समृद्धि में पर्याप्त योग दिया है। किंतु फिर भी अनेक स्थलों पर उन्होंने शब्दों को नया रूप देने के स्थान पर उनके स्वरूप को विकृत कर दिया है। केशव भी इस रोग से छूते नहीं रहे। इस संबंध में यदि यह कहें कि उनके काव्य में यह दोष कुछ अधिक है तो अत्युक्ति न होगी। बानगी के लिए देखिए, बाल बहिक्रम दीपति देह त्रिविक्रम की गति लीली लई ही। रसिक प्रिया चतुर्दश प्रभाव। छाड़ी दियो अति आरस पारस केशव स्वारथ साथ समूरो। कवि प्रिया अष्टम प्रभाव। सब जगत जानी अमित्र रामचंद्रिका नवम प्रकाश। कही केशव मंडही रार रन करीरी राखें खित्तही भवन रतन बावनी। इनमें बहिक्रम पारस जगत और खित्तही क्रमशः व्याक्रम पार्श्व जगत और खेत के विकृत रूप हैं। यह बात तो रही केशव द्वारा प्रयुक्त शब्दों के रूप वैविध्य की। जहां तक उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी प्रयोगों का प्रश्न है वह भी इस विशेषता से असंपृक्त नहीं। यथा लोक लाज तजी राज राज रंक निरंसक विराजत जोई आवत सोई कहत करत पुनि हसत न लाजत घर घर जुवती जुवनी जोर गही गांठिनी जो रही बसन छीनी मुख मांडी आंजी लोचन तिन तो रही। दूसरा का क ज्यों ज्यों बहु बरजे मैं मेरे प्राण प्राणनाथ अंग न लगाइए जू आगे दुख पाई बौ। ख जो हो कहो रही जय तो प्रभुता प्रकट होती चलन कहो तो हित हानि नाही सहनो। तीसरा पाहंते पतिनी करी पावन टूक कियो धनु द्वय हर कोरे छत्रविहीन करी छन में छिति गर्व हत्यो तिनके वर कोरे पर्वत पुंज पुरैनी के पात समान तरे अंज हूँ धर कोरे हुई नारायण हूँ प न ये गुण कौन यहाँ नर बानर कोरे। रामचंद्रिका षोडश प्रकाश। इनमें प्रथम उद्धरण के प्रथम दो चरणों में काले शब्द वर्तमान कालिक क्रिया रूपवाद के दो चरणों में काले टाइप में वर्तमान कालिक क्रिया रूपों से भिन्न हैं। द्वितीय उद्धरणों के दोनों अंशों की काले टाइप में क्रियार्थक संज्ञाओं के रूप में एक जैसे नहीं। तृतीय उद्धरण में काले टाइप में विभक्ति रूपों में कतिपय एक दूसरे के विकल्प रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सब से व्याकरण रूपों का वैविध्य सहज ही प्रकट हो जाता है। इतना ही नहीं, संस्कृत के समासों, संधियों, विभक्ति रूपों और क्रिया रूपों के प्रयोग में भी उन्होंने किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया। उदाहरण के लिए, एकर दन गज बदन सदन बुद्धि मदनक मद मदन कदन सुत गौरी नंद आनंद कंद जगबंद चंद युत कछु आपुन अध अध गति चलंती फल पतितन कौ अरध फलंती तदुपरि केशव राय कही डंडक छंद अनंत सुनी सुनी रीझे साही जु उमगय उरसी समोद। इन उदाहरणों के काले अक्षरों में छपे अंशों में संस्कृत भाषा के व्याकरण के अनुसार ही क्रमशः समास, वर्तमान कालिक क्रिया, संधि और अधिकरण अभिव्यक्ति रूप का प्रयोग हुआ है। व्याकरण संबंधी प्रयोग में वैविध्य विशेषता उस दशा में जबकि अन्य भाषाओं के व्याकरण के नियम भी बिना किसी कारण के लागू कर दिए हों सामान्यतः अच्छी बात नहीं समझी जाती, कारण इनसे भाषा में व्यवस्था नहीं आ पाती। किंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो स्वीकार करना पड़ेगा कि यही एक ऐसी शक्ति है जो जड़ होने से उसकी रक्षा करती है। ब्रजभाषा कवियों की रचनाओं में यह बात सामान्य रूप से देखने को मिलती है, अतएव केशव भी इसके अपवाद नहीं कहे जा सकते। परंतु इससे आगे जहाँ पर वे व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर बैठे हैं वहाँ उनके दोष मार्जनीय नहीं रहे। आश्चर्य होता है कि जिस संस्कृत भाषा में व्याकरण संबंधी दोष विद्वानों के मध्य उपेक्षणीय नहीं समझा जाता, उसी भाषा का पंडित लोक भाषा के व्याकरण में नियमों के विशेष में विषय में इतना अगंभीर क्यों हो गया है। उदाहरण के लिए, क्रिया दोष। पहला, पाई परे हूं तय प्रीतम त्यों कही केशव क्यों हूं न मैं दृग्दीनी। रसिक प्रिया सप्तम प्रभाव। ख, चोर तें चतुर्भुज चहूं चक जाने हो काठ मध्य कौन पाठ बेदनी बखाने हो। कवि प्रिया षष्ठ प्रभाव। शब्दति चंचल चतुर्वभाति वीर चरित्र एकादश प्रकाश। इनमें ब्रजभाषा के व्याकरण के अनुसार मैद्रिक दीनी जाने हो बखाने हो तथा शब्दति के स्थान पर क्रमशः मैंने दिए जाने गए हो बखाने गए हो तथा शब्द करोति शब्द करती होना चाहिए था। दूसरा, लिंग दोष। जय जाय कहो हनुमंत हमारो। रामचंद्र का बीसवां प्रभाव। यहाँ जय को पुल्लिंग कहा गया है जबकि ब्रज भाषा में यह स्त्रीलिंग ही माना जाता है। तीसरा, वचन दोष। प्रति मंदिरन पताका लसे वीर चरित्र षोडश प्रकाश। यहाँ मंदिरन के साथ प्रति विशेष व्याकरण के अनुसार अशुद्ध कहा जाएगा, कारण प्रति के बाद विशेष से किसी अवस्था में बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं होता। संतोष की बात है कि इस प्रकार के दोष उनकी रचनाओं में पर्याप्त होते हुए भी इतने अधिक नहीं है कि उनकी भाषा के नितांत अव्यवस्थित होने की घोषणा की जा सके। संक्षेप में, केशव की भाषा स्वरूप की दृष्टि से शब्द और व्याकरण दोनों से संबद्ध प्रयोगों में पर्याप्त वैविध्यपूर्ण है। केवल संस्कृत अपभ्रंश आदि पूर्ववर्ती भाषाओं के ब्रजभाषा में प्रचलित शब्द ही उसमें प्रयुक्त नहीं हुए। इनके विशेषतः संस्कृत के अनेक ऐसे शब्द भी प्रचुर परिमाण में आ गए हैं जो या तो कवि ने प्रकृति प्रत्यादि की सहायता से स्वयं गढ़े हैं या फिर सामान्यतः अप्रचलित रहे हैं। इनके अतिरिक्त अवधि जैसी प्रतिष्ठित भाषा तथा बुंदेली जैसी समृद्ध क्षेत्रीय बोली के शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा की अपनी विशेषता है। विदेशी भाषाओं में अरबी फारसी के सर्वसाधारण में प्रचलित एवं अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग भी इसकी समृद्धि में अपना योग दे रहा है। कतिपय शब्दों को एक से अधिक रूपों में गढ़कर भी उन्होंने अपनी भाषा को ही नहीं समग्र ब्रज भाषा को वैविध्य की दृष्टि से समृद्ध बनाने का विशेष प्रयत्न किया है। शब्द प्रयोग के साथ ही साथ व्याकरण संबंधी प्रयोगों के विषय में भी यही बात सत्य है। ब्रजभाषा व्याकरण के नियमों के वैविध्य का तो उन्होंने खुलकर प्रयोग किया ही है, इसके अतिरिक्त संस्कृत अवधि और बुंदेली के व्याकरण संबंधी प्रयोग भी उनकी भाषा के कंठहार बन गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा होने से उनकी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से अनेक दोष आ गए हैं, पर नवीन प्रयोगों के द्वारा उन्होंने प्रकांतर से यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रजभाषा में सभी कुछ पचाने की अपार शक्ति है। भाषा सौष्ठव। शब्द और व्याकरण यदि भाषा के स्वरूप को खड़ा करते हैं तो सौष्ठव उसे सौंदर्य प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में स्वरूप यदि भाषा शरीर की गठन का परिचायक है तो सौंदर्य उसकी आकर्षण अथवा आह्लादन क्षमता को प्रकट करता है। चूंकि शब्द और अर्थ ही भाषा के प्रमुख अवयव है, अतएव एतद्गत सौंदर्य ही उसके समग्र अथवा आंशिक सौंदर्य का विभावक कहलाना चाहिए। इनमें शब्द सौंदर्य जहाँ शब्दालंकारों में विशेष रूप से व्यक्त होता है, वहाँ अर्थगत सौंदर्य शब्द की शक्तियों तथा उक्ति वैचित्र्य के रूप में देखा जा सकता है। गुण एवं रीतियाँ और वृत्तियाँ शब्द और अर्थ दोनों के संयुक्त सौंदर्य से संबंध रखते हैं। यद्यपि आपाततः इनसे शब्द सौंदर्य ही अधिक प्रकट होता है, केशव की भाषा के सौष्ठव की परीक्षा भी हम इन सबको दृष्टि में रखकर कर रहे हैं। शब्दालंकार। शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, विप्सा और पुनरुक्ति, ये चार अलंकार ही ऐसे हैं जो भाषा सौंदर्य में विशेष रूप से अभिवृद्धि करते हैं। इसमें अनुप्रास से जहाँ भाषा के अंतर्गत झंकार आती है, वहाँ यमक इसमें चमत्कार लाता है। विप्सा और पुनरुक्ति इसको गति प्रदान करते हैं। केशव ने अपनी रचनाओं में भाषागत सौंदर्य की सृष्टि करने के निमित्त इन तीनों का ही आश्रय लिया है, किंतु इनमें भी उनका सर्वाधिक लगाव यमक के प्रति दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि उनकी अधिकांश रचनाओं में इसकी छटा भाषा की यथावश्यकता चमत्कारक एवं गति संपन्न बना देती है। बानगी के लिए, नैननी की अतुराई, बैननी की चतुराई, गात की गुराई, न दुरति दुतिचाल की, आपने चरित्रणी के चित्रत विचित्र चित्र, चित्रणी ज्यो सौ है साथ पुत्रिका गुवाल की। रसिक प्रिया, सप्तम प्रभाव। यहाँ प्रथम चरण में नाननी, अतुराई और उराई की तथा द्वितीय चरण में चित्र की आवृत्ति हुई है। केशव की रचनाओं में ऐसा चमत्कार सामान्य रूप से देखा जा सकता है, किंतु इस संबंध में यह कह देना असंगत ना होगा कि चमत्कार में विश्वास रखते हुए भी वे अलंकार के पीछे पड़ते हुए प्रतीत नहीं होते। यही कारण है कि यह उनकी भाषा के सौंदर्य में अभिवृद्धि करता हुआ मिलता है, उस पर बोझ डालता हुआ दृष्टिगत नहीं होता। यमक के समान अनुप्रास का प्रयोग भी केशव की रचनाओं में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, परंतु विशेषता इसके प्रयोग में यह रही है कि वे पद्माकर आदि परवर्ती कवियों के समान समान वर्णों की आवृत्ति की झड़ी लगाने के स्थान पर वर्णों का साम्य तीन अथवा चार चार बार से अधिक नहीं लाते। यही कारण है कि अनुप्रास जन्य संगीत उनकी रचनाओं में स्थिर जल में उठने वाली तरंगों की लय का अधिक स्मरण दिलाता है। कहना ना होगा कि इस लय की सृष्टि उनकी रचनाओं में सामान्य रूप से अनुप्रास के प्रमुख दो भेदों वृत्ति और छेक के द्वारा ही हुई है। उदाहरण के लिए, पूरब की पूरा पुरी, पापर पुरी से तन, बापुरी व दुरही तय पायन परती है, दक्षिण की जच्छनी सी गच्छ अंतरिक्ष मग, पश्चिम की पक्षहीन पक्षी ज्यों डरती है। रामचंद्रिका 91 प्रकाश। यहाँ प और प की आवृत्ति में वृत्युनुप्रास तथा अक्ष और न च और छ तथा प और अक्ष की आवृत्तियों में छेकानुप्रास देखा जा सकता है। जहाँ तक अनुप्रास के शेष तीन भेदों के प्रयोग का प्रश्न है, उसके विषय में यह कहने में संकोच नहीं हो सकता कि इसमें ऐसा कोई वैशिष्ट नहीं है जिसके आधार पर हमारे आलोच्य को ब्रजभाषा के अन्य कवियों से पृथक करके देखा जा सके, अथवा जो उसकी भाषा की अपनी विशेषता कहा जाए। परिमाण की दृष्टि से यमक और अनुप्रास का प्रयोग केशव के काव्य में जितना अधिक देखने को मिलता है, उतना विप्सा और पुनरुक्ति का नहीं। बात वास्तव में यह है कि इन दोनों अलंकारों का संबंध क्रमशः भाव और वस्तु के साथ है। विप्सा जहाँ भाव के क्रम और आवेश को प्रकट करता है, वहाँ पुनरुक्ति वस्तु के कोमल, कठोर आदि रूपों का की व्यंजना कराता है। चूंकि केशव की रचनाओं में भावों के आवेग की अभिव्यक्ति सामान्यतः वस्तु वर्णन की तुलना में बहुत कम हुई है, अतएव उनमें विप्सा का प्रयोग खोज करने पर ही मिल सकेगा। पुनरुक्ति का प्रयोग अवश्य ही कुछ आधिक्य के साथ देखा जा सकता है और इसकी अपनी विशेषता इसी बात में निहित रही है कि विषय का स्वरूप इसके प्रयोग के साथ सहज ही प्रकट हो जाता है। अर्थध्वनन भाषा प्रसाधन के उपर्युक्त धर्मों के अतिरिक्त एक साधन और भी है, जिसे अंग्रेजी में ऑनोमोटोपिया कहा जाता है। इसके द्वारा ऐसे स्वर व्यंजन समूह वाले शब्दों का चयन किया जाता है, उसकी मिश्रित ध्वनि विषय के अनुरूप बनकर उसके बिंब को भी स्पष्ट कर देती है। इसमें संदेह नहीं कि वर्णों की इस प्रकार से आवृत्ति, अनुप्रास और यमक अथवा पुनरुक्ति और विप्सा की परिसीमाओं से बाहर नहीं पड़ती, किंतु फिर भी इसका संबंध शब्द के बाह्य स्वरूप के साथ ही होता है, उसकी प्रतीति के साथ नहीं। केशव ने भी इस प्रकार के ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं अपनी अभिव्यक्ति को संगीत की दृष्टि से ही नहीं, अर्थ ग्रहण की दृष्टि से भी अत्यंत समर्थ एवं सशक्त बना दिया है। उदाहरणार्थ, खलनी के खेल भैल, मनमथ मन ऐल, शैलजा के सैल गैल गैल प्रतिरोक है, सैलानी के सटपट, चंद्रचित सटपट, अति अति अतपट, अतंग के ओक है, इंद्रजू के अकबक, धाताजू के धकपक, सुभुंजी के सकपक, केशव दास को कहे, जब जब मृग्या को राम के कुमार चढ़े, तब तब कोलाहल होत लोक लोक है। कविप्रिया अष्टम प्रभाव। इसमें खैल भैल, सटपट, अटपट, चटपट, अकबक, धकपक और सकपगत स्वर व्यंजन ध्वनियां क्रमशः व्याकुलता, किंकर्तव्य विमूढ़ता, जन्य घबराहट, आतुरता, आतंक, आतंक जन्य घबराहट तथा आकस्मिकता जन्य आश्चर्य की व्यंजना करा रही है। गुण अर्थध्वनन के समान ही गुणों का संबंध भी वर्ण ध्वनियों और अर्थ के साथ रहता है। अंतर केवल इतना ही है कि अर्थध्वनन की दशा में पदगत ध्वनियों का उद्देश्य जहाँ अर्थ के स्वरूप को स्पष्ट कर उसकी अनुभूति को तीव्र बनाने में पूर्ण होता है, वहाँ गुण की स्थिति में ये अर्थ के माधुर्य आदि गुणों के अनुरूप चलकर इन गुणों के प्रभाव को स्थायी बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार एक अवस्था में ध्वनियों को प्राथमिकता दी जाती है और दूसरी में अर्थ को परवर्ती आचार्यों ने गुण तीन माने जाते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इनमें माधुर्य की स्थिति श्रृंगार, करुण और शांत इन तीन रसों में बताते हुए इसकी व्यंजना के लिए उन्होंने ट, ठ, ड, ढ वर्णों तथा समासों का भाव एवं रकार, णकार और अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग अनिवार्य कहा है। ओज के लिए वे कर्कश ध्वनियों अर्थात ट, ठ, ड, ढ, श, स, रेफ युक्त अक्षर, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय और चतुर्थ वर्णों का संयोग तथा लंबे समासों की अनिवार्यता स्वीकार करते हुए उसकी स्थिति वीर, विभत्स और रौद्र में मानते हैं। प्रसाद की स्थिति उनके विचार में किसी भी रस के अंतर्गत हो सकती है तथा इसकी विशेषता केवल इसी में निहित है कि रचना के श्रवण मात्र से उसका प्रभाव सूखे ईंधन में व्याप्त होने वाली अग्नि के समान क्षिप्र होता है। केशव की रचनाओं का अध्ययन करने पर यह सहज ही माना जा सकता है कि यद्यपि उनके काव्य का विषय मुख्य रूप से श्रृंगार, वीर और शांत रस ही रहे हैं, तथापि किसी विशेष गुण के प्रति उनका आग्रह नहीं रहा। विषयानुसार उन्होंने ऐसे शब्दों अथवा समासों का प्रयोग किया है कि तद्गत ध्वनियां उसके अनुकूल गुण विशेष की उत्पादक बन गई हैं। वैसे इनके प्रयोग के संबंध में यहाँ यह निवेदन कर देना असंगत न होगा कि केशव की रचनाओं में ओज की अभिव्यक्ति अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है और यह उनकी वीर रस तथा स्तुति संबंधी रचनाओं में सहज ही देखी जा सकती है। वानगी के लिए प्रत्येक गुण संबंधी एक एक उद्धरण देते हैं। देखिए, माधुर्य, लाड़िली लीली कलोरी लूरी, कह लाल लुके कह अग लगाई के, आजू त केशव कैसो हूँ, लेरुवे लागन देती न देखा हूँ आई के, बेगी चलो उठियाई लिवावन दौरी, अकेलिये हो अकुलाई के, भूली हूँ गोकुल गाँव में, गोविंद की जय गरूर न गाई चराई के। रसिक प्रिया सप्तम प्रभाव। प्रसाद गुण हाथी न साथी, घोरे न चेरे, न गाँव न ठाऊं को नाऊ बिलय है। तात न मात न पुत्र न मित्र, न वितना अंगव संग न रह है। केशव काम कौ राम बिसारत, और निकाम न काम ही ऐ है। चेत रे चेत अजौ चित्त, अंतर अतंक लोक अकेला ही जय है। कवि प्रिया षष्ठम प्रभाव। ओज विप्र चरण मम मात, सदा यह शुभ करी लिखी है। विप्रही संकट परही तहां, हम शीश सुदिज्य। त्रिभुवन पति निज हृदय, भृगु सुपूरन पद पिखवै। विप्र शरण हमेंस रहत, हम विघन न दिखवै। श्री रतन सेन कुल लाड़िलहु, विप्र बचन कीमी छंडी वब। कही केशव तन धन देहु, सब शत्रु पीठी नहीं दिज्जवै। यहाँ प्रथम उद्धरण में ड़ और ठ ये दो वर्ण शास्त्रीय दृष्टि से माधुर्य विरोधी कहे जा सकते हैं, किंतु श्रृंगारिक विषय की दृष्टि से इनका भी अपना महत्व है। लाडली शब्द किशोरावस्था की अलहड़ता की व्यंजना, जहाँ र के द्वारा ही करा सकने में समर्थ है, वहाँ उठी का ठ आगमन की आतुरता को प्रतीति करा रहा है। द्वितीय में अन्वय के साथ पाठ करने मात्र से विषय का बिंब ग्रहण होता चला जाता है, एवं तृतीय में समासों, द्वितीय युक्त शब्दों एवं कर्ण कटु ध्वनियों का प्रयोग अपने समन्वित प्रभाव द्वारा वक्ता की वाणी की को सहज ही ओजमयी बना रहा है। रीति और वृत्ति। रीति और वृत्ति का निकट का संबंध है। यह प्रायः संस्कृत के सभी आचार्यों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है, परंतु इसके साथ ही इन दोनों के भेदों भेद के संबंध में भी कम विवाद नहीं रहा। मम्मट जैसे आचार्यों ने तो रीति की के वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली नामक भेदों तथा वृत्ति के क्रमशः उपनाग्रिका, परुषा और कोमला संज्ञक भेदों को एक ही माना है। कहना न होगा कि इस विवाद का मुख्य कारण आचार्यों में गुण विषयक मौलिक मतभेद है। वामन जहाँ गुणों को शब्द और अर्थ के धर्म मानते हैं, वहाँ परवर्ती आचार्य इनको रस के धर्म स्वीकार करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शब्द और अर्थ के काव्य शरीर होने के नाते उनके धर्म अर्थात गुण रस का स्थान तो नहीं ले सकते, किंतु इतना निश्चित है कि रस के प्रभाव की व्यापकता के लिए इन दोनों का समन्वित योग अनिवार्य है। कारण गुण के अनुरूप शब्दगत वर्णों की ध्वनियों का महत्व अर्थ की अनुरूपता के बिना अपने आप में कुछ नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में वृत्ति को वृत्ति का पर्याय नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह रीति का अंग अवश्य हो सकती है, किंतु वामन ने रीति के तीन भेदों तथा द्वैत गुणों का जो विवेचन प्रस्तुत किया है, उसमें केवल पदों के बाह्य रूप अथवा वर्ण योजना का ही महत्व दृष्टि में आता है, माधुर्य का नहीं। ऐसी दशा में रीति और वृत्ति में भेद करना उचित प्रतीत नहीं होता। यदि रीति के अंतर्गत शब्द और अर्थ को ही समान रूप में महत्व प्रदान किया जाए, तो यह अर्थ ध्वनन जैसे अलंकारों की कोटि में आ जाएगी। अस्तु, रीति का अर्थ वृत्ति अर्थात गुण विशेष की व्यंजक वर्ण योजना से लिया जाए, तो कहना पड़ेगा कि केशव की रचनाओं में परिमाण की दृष्टि से परुषा वृत्ति का प्राधान्य है। यद्यपि मधुरा और कोमला का प्रयोग भी अपने आप में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाता है, यह गुणों विषयक उपर्युक्त उद्धरणों से देखा जा सकता है। इसी प्रकार वामन के अनुसार रीति का अर्थ विशिष्ट गुणों की समान रूप से व्यंजक शब्दार्थवली की परीक्षा ली जाए, तो उस दृष्टि से भी केशव पीछे नहीं ठहरते। यह अर्थ ध्वनन के प्रसंग में उद्धृत छंदों से स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त यदि रुद्रट के कथनानुसार केवल समास के प्रयोग के आधार पर रीति के भेद प्रस्तुत करके केशव की रचनाओं का अध्ययन करें, तो स्वतः ही उनकी रचनाओं में वैदर्भी का प्राधान्य इसलिए मिलेगा क्योंकि ब्रजभाषा समास प्रधान भाषा नहीं है। वैसे सामान्य रूप से राजप्रशस्तियों तथा स्रोतों एवं इतर विषयों संबंधी रचनाओं में दो तीन पदों से युक्त समस्त शब्दावली का प्रयोग होने के कारण पांचाली रीति भी उनके काव्य का प्रधान अंग कही जा सकती है। शब्द शक्ति। अभिव्यक्ति के सहज माध्यम रूप में भाषा की सफलता तभी संभव है जबकि उसका प्रत्येक पद अनुभूति के विविध अवयवों की सही प्रतीति कराए। चूंकि कोई भी पद एक ही अनुभूति की विभिन्न छायाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, इसी कारण कवि को प्रायः इसके अर्थ का संकोच अथवा विस्तार करना पड़ता है। अर्थ के अंतर्गत इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता का न्याय तथा उसका नियमन शब्द शक्ति करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि केशव ने आवश्यकता अनुसार शब्द की तीनों ही शक्तियों का आश्रय लिया है। अभिधा। अभिधा शक्ति का संबंध केवल शब्द के उस अर्थ के साथ ही होता है जिसमें किसी भी प्रकार के शिल्प की अपेक्षा नहीं रहती। यह अपने मूल रूप में प्रस्तुत होकर विषय का सही रूप में ग्रहण इस प्रकार करता है कि विषय की अनुभूति होने से पूर्व किसी भी प्रकार का मानसिक व्यायाम पाठक को नहीं करना पड़ता। दूसरे, कभी कभी यह अपने आप में इतना रमणीक भी होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात इसके सूक्ष्मता की ओर घसीट कर ले जाना अधिक चारुता उत्पन्न नहीं करता। काव्य शास्त्र में वाच्यार्थ के इसी रूप को गुणीभूत व्यंग्य के नाम से अभिहित किया जाता है। केशव ने शब्द शक्ति के संबंध में यद्यपि अपना कोई सैद्धांतिक मत तो प्रस्तुत नहीं किया, तथापि इतना निश्चित है कि अभिधा के व्यापार संबंधी इन दोनों तथ्यों से वे भली भांति परिचित थे। यही कारण है कि अपनी रचनाओं में उन्होंने शब्दों द्वारा उच्च कोटि के सौंदर्य का निर्वाह करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए, तोसे सपुत ही जाई कै, बाली अपुत ही की पदवी पगुधारे, अंगद संग लय मेरव सबै, दल आज ही क्यों न हतै बपु मारे, रामचंद्रिका षोडश प्रभाव। उपरोक्त उदाहरणों में काले टाइप में अंशों और शब्दों का वाच्यार्थ अपने मूल रूप में ही सुंदर है। इनमें किसी प्रकार की सूक्ष्मता को खोजना अथवा इनके स्थान पर अन्य समानार्थक शब्द रखना रचनाओं की प्रभाव शक्ति को नष्ट कर डालेगा। लक्षण और व्यंजना। अपनी रमणीयता के कारण वाच्यार्थ रसास्वाद में सहायक होता ही है, किंतु यदि इसको सूक्ष्मता प्रदान की जाए तो उससे भी रस की आस्वादनीयता में वृद्धि हो जाती है। अर्थगत यह सूक्ष्मता लक्षणा और व्यंजना से आती है। अभिधा जहाँ केवल काव्य विषय को ग्रहण कराती है, वहाँ लक्षणा से उसके मूर्त रूप की अपेक्षा उसके गुणों की अधिक प्रतीति होती है। व्यंजना द्वारा इससे आगे इन गुणों के अंतः क्षेत्र की झलक का ग्रहण संभव हो पाता है। इस प्रकार रस जो विषय की अनुभूति से प्राप्त हुआ आनंद मात्र है, उसके आस्वादन में यदि शब्दार्थ की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर प्रतीति को इतना महत्व मिला तो आश्चर्य ही क्या। कहना ना होगा कि अर्थबोध संबंधी व्याघ्यात से युक्त हुए भी लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के सूक्ष्मता जन्य सौंदर्य का महत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य ही नहीं किया, प्रत्युत उन्होंने व्यंग्य प्रधान काव्य को ध्वनि कहकर उसकी उत्कृष्टता की घोषणा की है। जो हो, केशव ने वाचिक शब्दों का प्रयोग जिस सिद्धहस्तता के साथ किया है, लाक्षणिक और व्यंजक शब्दों के प्रयोग में उतनी ही पटुता दिखाई है। उनके लाक्षणिक प्रयोगों में से कतिपय तो अलंकारिक हैं और वे साम्य मूलक अलंकारों के प्रयोग में सहज ही देखे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे प्रयोग भी उनकी रचनाओं में कम नहीं हैं जिनसे अनुभूति को अस्पष्टता प्राप्त नहीं हुई, प्रत्युत उनमें अलौकिक सौंदर्य अर्थात ध्वनि भी विद्यमान है। देखिए, ब्राह्मण बेचत बेदन को सुमलेच्छ महिप की सेव करै जो, क्षत्रिय दंडत हैं परजा अपराध बिना द्विजवृत्ति हरै जो, छाड़ी दया क्रय विक्रय वैश्यनी छत्रिन ज्यो हथियार धरै जो, पूजत शूद्र शिला धनु चोरत चित्त में राजन को न डरै जो। विज्ञान गीता सप्तम प्रभाव। यहाँ ब्राह्मणों को वेदों का विक्रय और मलेच्छों की सेवा करते, क्षत्रियों को निरपराध प्रजा को दंडित करते और ब्राह्मणों की आजीविका छीनते हुए, वैश्यों को व्यापार से विरत होते और हथियार धारण करते हुए एवं शूद्रों को मूर्ति पूजा और चोरी करने के साथ निर्भय हुआ बताया गया है। पर शास्त्रों में इन चारों वर्णों के ये कर्म नहीं बताए गए, अतः मुख्य अर्थ का बाद हुआ। तब इस वाच्यार्थ को सर्वथा त्याग कर लक्षणा के आधार पर अर्थ होगा। किन वर्णों ने अपने अपने शास्त्र विहित कर्मों को त्याग कर अन्य वर्णों के कर्म ग्रहण कर लिए हैं। इस प्रकार उक्त सभी वाक्यार्थों में कर्म वैमुख्य व्यंग्यार्थ हुआ। चूंकि इस अर्थ द्वारा वाच्यार्थ का तिरस्कार है, अतः इसमें अत्यंत तिरस्कृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि है। लाक्षणिक शब्दों के समान व्यंजक शब्दों का प्रयोग भी केशव ने अत्यंत स्वच्छता से किया है। संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार होने के कारण वे शब्दों को एक से अधिक अर्थों में इतने वैशिष्ट्य के साथ प्रयुक्त करते रहे हैं कि व्यंजना शक्ति के समस्त अवयव अर्थ की प्रेसनीयता में सहज ही दृष्टिगत हो जाते हैं। श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो हो एक न काहू हयोजू, सागर का मद झारी शिकारी त्रिकूट की देह बिहारी छयो जू सिय निहारी संहारी कह राकस शोक अशोक बनही दयो जू अक्ष कुमार ही मारी कह लंक ही जारी कह नीके ही जात भयो जू। रामचंद्र का षोडश प्रभाव। यहाँ एक न काहू हयो जू त्रिकूट की देह विहारी छयो जू सिय निहारी संहारी कह राकस शोक अशोक बनही दयो अक्ष कुमार ही मारिक है तथा लंक ही जारिक है वाक्यों अथवा वाक्यांशों के साथ निके ही जात भयो। वाक्य से राम की शक्ति की असाधारणता की व्यंजना हो रही है। अतएव इसमें शब्द शक्ति शक्ति उद्भव संलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि है। मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्रत्येक जीवित भाषा की अपनी विशेषता हुआ करती हैं। इनके मूल में यद्यपि लक्षणाशक्ति काम करती है तथापि इनसे क्रमशः चलतापन और प्रभावकता आने के कारण भाषा में अतिरिक्त सामर्थ्य आ जाती है। केशव ने अवसर मिलने पर अपनी भाषा में भी इनका प्रयोग अत्यंत आग्रह के साथ किया है और इसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। उदाहरण के लिए देखिए, हंसी बोलत ही सुहसै सब केशव लाज भगावत लोग भगय कछु बात चलावत घैरु चले मत आनत ही मनमत जगय सखी तु जुक ही सुहुति मन मेरे है जाति यह न हियो उमगय हरि त्यों टुकदिथि पसारत ही अंगुरिन पसारन लोग लगय। रसिक प्रिया षोडश प्रभाव। मारनहार उबारनहार सूताओ सबके सिर ऊपर है यह कवि प्रिया एकादश प्रभाव। राम की बाम जो आनी चौराई सो लंक में मिचू की बेली बैजू बीस विषय बलवंत होते जो होती दृग केशव रूप रईजू। रामचंद्र का पंचदश प्रभाव। इही भांति रच्याओ जग झूठाओ महासु कहा जगदीश के हाथ पर्याओ विज्ञान गीता नवम प्रभाव। इन उदाहरणों में काले अक्षरों में छपे मुहावरे जिन भावों की व्यंजना करा रहे हैं वे केवल अनुभूति के विषय हैं। इसी प्रकार का प्रभाव लोकोक्तियों के प्रयोग में है। आग को तव दाध्य अंग आगी ही सिरातु है कवि प्रिया षष्ठ प्रभाव। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई हो न हार वह रहे मिटे मेटी न मिटाई होई तिनुका बज्र वज्र तिनुका है टुटे। रामचंद्र का सप्तम प्रभाव। जानी परे परमेश्वर की गति पेचन की गति जानी न जाई विज्ञान गीता तृतीय प्रभाव। उक्ति वैचित्र्य। उक्ति वैचित्र उत्तम काव्य का सहज अंग है। इसके द्वारा भाषा में वह धार आ जाती है जो व्यंग को तीखा और तीव्र बनाने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ यह कह देना असंगत ना होगा कि वैचित्र्य से हमारा अभिप्राय कवि भणितिगत वैदग्ध जन अर्थात कवि कर्म कौशल जन्य उस शब्दार्थ चारुता से है जिसको वक्रोक्ति जीवितकार आचार्य कुंतक ने वक्रता संज्ञा से अभिहित किया है। अतएव केशव ने उक्ति वैचित्र की परीक्षा वक्रोक्ति जीवित में बताए गए वक्रता के उन सभी भेदों के आधार पर करेंगे जिनसे भाषा का सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। अस्तु। कुंतक द्वारा परिगणित वक्रता के छह भेदों में से चार भाषा सौंदर्य की अभिवृद्धि से संबद्ध कहे जा सकते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता। इनमें वर्ण विन्यास वक्रता से उनका अभिप्राय स्पष्टता अनुप्रास योजना और इसके अतिरिक्त वर्गांत योग्य स्पर्शों त ल न आदि वर्णों के द्वित्व तथा रेफादि युक्त वर्णों की आवृत्ति से रहा है जिसके लिए वे विषय अनुकूलता सौंदर्य नवीनता तथा प्रसाद गुण आवश्यक मानते हैं। यमक का उन्होंने इसमें अंतर्भान कर दिया है। केशव ने इन सभी तत्वों का अपनी रचनाओं में जिस कौशल के साथ निर्वाह किया है उसके विषय में पहले चर्चा की जा चुकी है। यहाँ तो इस संबंध में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उनका वर्ण विन्यास इतना सधा हुआ है कि सहज ही उनके भाषाधिकार का परिचय दे देता है। सार्थक वर्ण समूह का ही दूसरा नाम पद है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसके दो अंग हैं प्रकृति और प्रत्यय जिनका अपने स्थान पर विशेष महत्व हुआ करता है। कुंतक ने इसीलिए इनके वैदग्धपूर्ण प्रयोग को पद पूर्वार्ध वक्रता और पद परार्ध वक्रता इन दो पृथक संज्ञाओं से अभिहित करते हुए इनके उपभेदों का सूक्ष्म विवेचन किया है। पदपूर्वार्ध वक्रता के ये 8वें दिन उन्होंने कहे हैं, पहला रूढ़ी वैचित्र वक्रता, दूसरा पर्याय वक्रता, तीसरा उपचार वक्रता, चौथा संवृत्ति वक्रता, पांचवा विशेषण वक्रता, छठा वृत्ति वक्रता, सातवां लिंग वैचित्र वक्रता, आठवां क्रिया वैचित्र वक्रता। इनमें रूढ़ी वैचित्र से आचार्य का आशय कोष तथा लोक व्यवहार में प्रसिद्ध अर्थ के अंतर्गत लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने से है, जबकि पर्याय वक्रता की सफलता वे पर्यायवाची शब्दों का उनकी आत्मा के अनुसार प्रयोग करने में मानते हैं। उपचार वक्रता जहाँ साम्य मूलक अलंकार व्यापार का पर्याय मात्र है, वहाँ विशेषण का वैदग्ध प्रयोगपूर्ण विशेषण प्रधान अलंकारों की कोटि में रखा जा सकता है। वैसे अलंकार के अभाव में भी विशेषण वस्तु वर्णन को सुंदर बना देते हैं। संवृत्ति वक्रता तथा वृत्ति वक्रता का संबंध क्रमशः संज्ञा आदि के गोपन तथा समस्त पदावली की योजना से उत्पन्न चमत्कार से है। लिंग और क्रिया के विविध प्रयोगों में से भी विशिष्ट सौंदर्य की सृष्टि होती है। इसी प्रकार दूसरी ओर पहला काल, दूसरा कारक, तीसरा वचन, चौथा पुरुष, पांचवा उपग्रह, सूचक प्रत्ययों तथा निपातन आदि स्वतंत्र प्रत्ययों के कुशल प्रयोग होने से ये सभी पद परार्ध वक्रता के उभेर हो जाते हैं। परंतु यहाँ यह कह देना असंगत नहीं कि कुंतक का यह विवेचन संस्कृत भाषा पर ही आधारित है। ब्रजभाषा की प्रकृति संस्कृत से भिन्न होने के कारण उसमें प्रकृति और प्रत्यय की उक्त विशेषताएं अपने अनुसार ही मिल सकती है। केशव संस्कृत और ब्रजभाषा के व्याकरणों से भली भांति परिचित थे। संस्कृत व्याकरण पर संभवतः उनका विशेष अधिकार भी था। इधर उनका जन्म भी इस भाषा के ऐसे पंडितों के घर में हुआ था जहाँ के नौकर भी लोक भाषा में बात नहीं करते थे। यही कारण है कि उनकी भाषा यद्यपि लोक भाषा है तथापि उसमें इस भाषा का विशेष प्रभाव दृष्टिगत होता है। कहना न होगा कि इस प्रभाव ने उनकी भाषा को अव्यवस्थित बनाने के स्थान पर अत्यंत समर्थ और भावाभिव्यंजक बनाने में पूर्ण योग दिया है। कदाचित इसलिए उनके काव्य में सामान्यता वक्रता के उक्त भेद भी सम्यक रूप से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ बानगी के लिए प्रत्येक संबंधी एक एक उद्धरण लेते हैं। देखिए, पहला रूढ़ी वैचित्र वक्रता। भावे जहाँ व्यभिचारी, वेदय रमय पर नारी, द्वि जगन दंड धारी, चोरी पर पीर की, मानी नीन ही के मन, मानियत मान भंग, सिंधु ही उलंघी जाती, कीरति शरीर की, मूले तो अधोगतिन पावत है केशव दास, मीचू ही सो है वियोग, इच्छा गंगा नीर की, बंध्या बासनानी, जानू विधवा सु बाटिकाई, ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की। रामचंद्रिका अष्टविंश प्रकाश। यहाँ काले शब्दों के रूढ़ अर्थों के भीतर प्रसंग वैशिष्ट की सहायता से लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न किया गया है। दूसरा पर्याय वक्रता। भूषण फूलन के अंग अंग, सरासन फूलन के अंग सो है, पंकज चारु विलोचन घूमत, मोहमयी मदरा रुचि रो है, बाहुलता रति कंठ विराजति, केशव रूप को रूपक जो है, सुंदर श्याम स्वरूप बने, जग मोहन ज्यों जग के मन मोह है। विज्ञान गीता द्वितीय प्रभाव। भगवान कृष्ण का एक नाम जगन मोहन भी है। कवि के विचार में यह दूसरा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वे अपने रूप के द्वारा सबको मोहते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में कृष्ण के इस नाम पर्याय द्वारा रूप सौंदर्य को पुष्ट करके चमत्कार की सृष्टि को जाने से पर्याय वक्रता है। तीसरा उपचार वक्रता। सूर से फूल सुबास कुबास सी, भाक सी से भय भवन सुभागे, केशव बाग महावन सो जुर सी, चढ़ी जोन सबय अंग दागे, नेह लग्य उर नाहर सौ, निमि नहा धरिक कहूँ अनुरागे, गारी से गति बिरी बिस सी, सिग्रेई सिंगार अंगार से लागे। रसिक प्रिया सप्तम प्रभाव। इसमें समस्त काले शब्दों में कुबाससी, भागसी से, महाबन, गारी से, विससी, अंगार से, इसमें उपमानों के कारण ही नायिका का विरह प्रभावशाली बन सका है। भाव की गहराई तक केशव कितने जा सकते हैं यह इस उदाहरण से स्पष्ट है। चौथा संवृत्ति वक्रता। नाम सुने जिनको अरि, मत गयंद दिंगत अनंतनी नाके, बरनत विक्रम को क्रम के सब शेष अशेष मुखावली था कह सो यही वीर नरेश ही जानहु स्वर्ग को फूल लसय सिर जाके राजनी मांझ विराजतु है समशेर गहे समशेर न ताके जहांगीर जस चंद्रिका। इसमें समस्त काले टाइप जिनको नाके थाके और ताके, इसमें सर्वनाम ही विषय के पराक्रम को ग्राह्य एवं प्रभावशाली बना रहे हैं। पांचवा विशेषण वक्रता को बपुरा जो मिल्यो है विभीषण है कुल दूषण जीवे गए कौलो कुंभकरण मर्यो मघवा रिपु तौरे कहा न डरो जम सोलो श्री रघुनाथ के गातन सुंदरी जानही तू कुशलात न तौलो साल सबे दिगपालन कौ कर रावण के करवाल है जो लो। कवि प्रिया एकादश प्रभाव, इसमें समस्त काले टाइप में दिए गए विशेषण तथा क्रिया विशेषण ही अपनी उपस्थिति द्वारा ऐसा सौंदर्य उत्पन्न कर रहे हैं जिससे वक्ता का औद्धत्य सहज आकर्षक बन गया है। छठा वृत्ति वक्रता मूसक वाहन गज बदन एकर दन मुदमूल बंदहु गणनायक चरण सरन सदा सुखतूल रतन बावनी। यहाँ काले शब्द मूसक वाहन गजबदन एकरदन गणनायक, इन शब्दों में समास की सहायता से ही गणेश जी का बिंब स्पष्ट होकर ग्राह्य बन सका है। सातवां लिंग वैचित्र वक्रता कोपी उठी विधि हूते सुबीर नरपति दान कृपान की धारा कंत हमारो किए बहुखंड बहाए दिए तिनकी जलधारा कैसी करें हम कासो कहें जू बचाए करी केसव कौन की सारा यों बहुबार पुरंदर के दरबार पुकारती दारिद्र दारा। वीर चरित्र बत्तीसवां प्रकाश यहाँ दारिद्र पत्नी की इंद्र के समक्ष यह पुकार कि उसके पति को कवि के आश्रयदाता की दो स्त्रियों कृपाण की धारा तथा दान के समय संकल्प जल की धारा ने मारकर बहा दिया आश्रयदाता की दानशीलता को प्रभावी बना रही है। कहना न होगा कि स्त्री और पुरुष विषय यह प्रसंग कल्पित करके ही कवि ने यह चमत्कार उत्पन्न किया है। क्रिया वैचित्र वक्रता पेट चढ़े पलना पलका चढ़ी पालकी हु चढ़ी मुँह मढ़े रे चौक चढ़े चित्रसारी चढ़े गजबाजी चढ़े गर्व चढ़े रे व्योम विमान चढ़े हुई रहे कही केसव सो कबहू न पढ़े रे चेतत नाही रहे चढ़ी चित्त सो चाहत मूढ़ चिता चढ़े रे। रामचंद्रिका सूडस प्रकाश इसमें चढ़ना क्रिया के प्रयोग द्वारा ही लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न किया गया है। पद परार्थ वक्रता इससे संबद्ध भी एक उदाहरण देते हैं जिसमें प्रत्यय निपात कारक आदि का चमत्कार स्वतः स्पष्ट है। आजु कछु अखियां हरी और सी मानव महावर महारंगी है मोहन मोही सीलागति मोही इतें पर मोहन मोह लगी है मेरी सो मोसहू मानहू बेगी ही रसरोस की रति जगी है मेरे वियोग के तेज तजी किंधो केसव काहू के प्रेम पगी है। रसिक प्रिया सप्तम प्रभाव यहाँ रंगी है लगी है जगी है और पगी है में काल वक्रता कछु और सी मानो और किंधो में अव्यय वक्रता अखियां के या में निपात वक्रता तथा हिय और वियोग के तेज में कारक वक्रता जन्य सौंदर्य ही समस्त छंद के वर्ण विषय को आकर्षक बना रहा है। इसी प्रकार वचन पुरुष और धातु पद संबंधी वक्रता भी केशव की रचनाओं में खोजी जा सकती है। यद्यपि ब्रजभाषा में सामान्य रूप से इसके दर्शन स्थिर नहीं होते क्योंकि इसकी प्रकृति संस्कृत से भिन्न है। जहाँ तक वाक्य वक्रता का प्रश्न है केशव का काव्य उसका सबसे विशाल क्रीड़ा क्षेत्र रहा है। विभिन्न अलंकारों के प्रयोग में इसके दर्शन होते ही हैं। इससे आगे जहाँ जहाँ उन्होंने दो व्यक्तियों में परस्पर वार्तालाप दिखाया है वहाँ वहाँ इसका चमत्कार चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया है। हिंदी साहित्य में केशव अपनी संवाद योजना के लिए प्रसिद्ध ही नहीं अपनी तुलना में किसी को ठहरने भी नहीं देते। इसका रहस्य केवल उनके द्वारा वाक्य वक्रता के प्रयोग में ही निहित रहा है। उदाहरणार्थ एक छंद प्रस्तुत करते हैं जिससे सहज ही स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने किस सफाई से दो वक्ताओं रावण और अंगद के वाग वैदग्ध्य को प्रकट किया है। राम को काम कहा रिपु जीतही कौन कबे रिपु जीत्यो कहा। राम बलौ छल सौ भृगुनंदन गर्व हत्यौ द्विज दिन महा। दीन सु क्यों छिति छत्र हत्यौ बिन प्राणन है राज कियौ। है कौन वह विसर्यौ जिन खेलत ही तुम्हें बांधी लियो। रामचंद्रिका षोडश प्रकाश। संक्षेप में केशव की भाषा सौष्ठव की दृष्टि से भी अपने आप में किसी प्रकार से हीन नहीं कही जा सकती। भावों तथा विषय के बिंबों को मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए जिन साधनों की अपेक्षा होती है उन्होंने उनकी योजना यथावश्यकता अत्यंत कौशल के साथ की है। यदि यह कहें कि भाषा सौष्ठव के उक्त साधनों के प्रयोग के कारण ही वे अपने काव्य को प्रभावशाली बनाने में समर्थ हो सके हैं तो असंगत ना होगा। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शब्द भंडार व्याकरण और सौष्ठव तीनों की दृष्टि से केशव की भाषा आदर्श है। इसमें संदेह नहीं कि शब्दों तथा व्याकरण संबंधी नियमों के वैविध्यपूर्ण प्रयोग के कारण उनकी भाषा में कहीं कहीं ऐसे दोष आ गए हैं जो स्पष्ट एवं खटकने वाले हैं। तथापि इस दिशा में साहस कर ब्रजभाषा को शब्दों और व्याकरणों के नियमों की दृष्टि से क्रमशः समृद्ध और व्यापक बनाने में उन्होंने जो महत्वपूर्ण योग दिया है उसकी तुलना से वे नगण्य हैं। व्यापक रूप से भाषा प्रसाधन के विभिन्न साधनों का सफल प्रयोग उनकी रचनाओं में जितना हुआ है उतना संभवतः अन्यत्र दुर्लभ है। वास्तव में यदि केशव न हुए होते तो ऋतिकालीन कवि अपनी भाषा में उनका अनुकरण करते हुए संस्कृत की तत्सम शब्दावली का खुलकर प्रयोग कर अपने युग के काव्य को कला और शिल्प की दृष्टि से मूल्यवान बना सकते, इसमें संदेह है। केशव की भाषा शीर्षक यहीं समाप्त होती है।